सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फूकन और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। एक बड़ा फैसला जो है उस पे हम बात करेंगे, पर उससे पहले आइए स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में सीनियर जर्नलिस्ट संदीप फूकन जी का। संदीप जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार।
संदीप जी, आज राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उसने एक बड़ा फैसला किया है कि आने वाली जनगणना में जातीय जनगणना को भी जोड़ा जाएगा। ये फैसला कितना बड़ा है, हम इस पे आपसे जानेंगे। आपसे हमारा पहला सवाल भी यही होगा, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इस फैसले की जानकारी देते हुए क्या कहा।
आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था।
संदीप जी, हम आपसे इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये फैसला कितना बड़ा है, आप इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, ये फैसला बहुत बड़ा है और जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 के जो आम चुनाव थे, कई सारी विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जनगणना जो है वो 2021 में ही होना था, लेकिन क्योंकि उस समय कोविड के वजह से देश कोविड के चपेट में था तो सब कुछ डिले हो गया। जब भी ये जनगणना होना था तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी ये मांग थी। विपक्षी नेता, जो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया था। सरकार ने हमेशा से कहा था कि हम नहीं कराएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन सरकार ने ये भी नहीं कहा था कि हम जरूर कराएंगे। सरकार के अंदर भी दो मत थे। ये बहुत बड़ी, आपको मैं ये बता दूं आदित्य जी, कि जो जातीय जनगणना है वो 1931 के बाद से कभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हुआ। जब से हमारी देश को आजादी मिली तब से जितनी बार भी, मतलब हर दशक पे एक जनगणना होता था, 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71, 81, 91, किसी में भी जातीय जनगणना नहीं हुआ। जबकि अधिकतर समय उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने भी नहीं किया और दूसरे सरकारों ने भी नहीं किया। लेकिन अभी ये बहुत सारी पार्टियों का मानना है कि अभी एक ऐसा समय आ गया है कि पॉलिसी मेकिंग के लिए, किस समाज का कितना संख्या है, मतलब किस कम्युनिटी का कितना संख्या है, उसको एक्यूरेटली जानना चाहिए। एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जरूर हुआ था 2011 में, यूपीए के समय में हुआ था, लेकिन वो कास्ट सेंसस से अलग था। हालांकि उसके जो रिजल्ट्स थे वो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में भी दो मत थे। एक मत कहती थी कि इनको सार्वजनिक किया जाए, दूसरे मत बोल रहे थे कि इनके जो आंकड़े जो हमें मिले हैं उस पे हमें दोबारा एक गहन करना पड़ेगा, और इस असमंजस में वो भी कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 से, खास तौर से पिछले 3-4 सालों से विपक्ष ने इसको बहुत जोर पकड़ा। हालांकि सरकार के जो एलाइज हैं, बीजेपी के खुद के एलाय नीतीश कुमार जी, उनके अगुवाई में बिहार में एक कास्ट सर्वे हुआ था। आपको ये बता दूं आदित्य जी, सेंसस जो है, हालांकि हम लोग मीडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स जो करती है उसको भी हम लोग सेंसस बोलते हैं, लेकिन सेंसस सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है
जी।
बाकी के जो राज्य सरकारें करती है वो सर्वे होते हैं। तो हाल ही में देखा हमने कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने एक कास्ट सर्वे किया, और लेकिन सबसे पहले किसी राज्य सरकार ने अगर किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार थी। और जैसे मैंने कहा कि एनडीए के घटक दलों में भी ये एक ओपिनियन था कि समय आ चुका है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और चंद्रबाबू नायडू भी उसके समर्थन में थे, लेकिन फाइनल डिसीजन बीजेपी को लेना था और आज एक बहुत बड़ी फैसला इन्होंने ले लिया।
जी बिल्कुल, मेरा सवाल अगला यही है कि जैसा आपने भी बताया कि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जातीय सर्वे कराया है और आपने बिहार का जिक्र किया, तेलंगाना का जिक्र किया, हम अगर देखें
कर्नाटक तो पिछले... भी है जी, जी कर्नाटक भी है,
कर्नाटक भी है उसमें, हम अगर देखें तो पिछले कुछ समय से जो विपक्षी दल थे उनकी ये एक सबसे बड़ी मांग में से हम कहें तो ये निकलकर सामने आया था, वो चाहते थे कि जातीय जनगणना हो। तो इस फैसले को इस समय पे जो सरकार ने लिया है, इसकी जरूरत आज के समय में जातीय जनगणना की जरूरत आपके हिसाब से कितनी अहम हो जाती है जिस पर आज सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया?
दरअसल ये इतना आसान फैसला भी नहीं है किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आपने विपक्ष की जिक्र की कि विपक्ष जरूर ये अहम मांग थी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी उठाया, लेकिन मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देता हूँ। कांग्रेस की ही सरकार है कर्नाटक में और उन्होंने एक सर्वे किया था। अभी 17 अप्रैल में सिद्धारमैया सरकार है, उनकी जो कैबिनेट थी, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, और लेकिन ये लोग खुले तौर से ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इनके जो नतीजे हैं उनको सार्वजनिक किया जाए या नहीं, क्योंकि कई चीजें ऐसी बाहर निकल के आ सकती है जिससे कि विवाद भी हो सकता है। तो ये आसान फैसला नहीं होता है।
बिल्कुल।
तो कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी, देखिए मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष और राहुल गांधी विपक्षी नेता, उन दोनों ने काफी दिनों से ये बोलते रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्हीं की सरकार कर्नाटक में वो लोग नहीं कर पाए, मतलब वो अभी तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। किन कारणों से नहीं किया है वो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन लोग ऐसे जो खबरें हमें करते रहते हैं उसमें ये जाहिर है कि कैबिनेट एकमत नहीं है, कैबिनेट के अंदर काफी विभिन्न मत है और ये सारे मतों को जब तक एक कंसेंसस नहीं लिया जाए तब तक शायद कर्नाटक में भी वो लोग सार्वजनिक नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जो केंद्र सरकार है उसमें भी कई मते थे, जैसे मैंने अभी कहा कि बीजेपी के घटक दल जो है कुछ लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे, कोई ओपिनियन नहीं थे, बीजेपी के अंदर भी एक ऐसे व्यू थे कि शायद इससे जो है ये सही नहीं होगा, इससे विभाजन हो सकता है जातीय जनगणना। लेकिन जो आदित्य जी जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जो मुख्य तर्क ये है कि देखिए मतलब किस वर्ग के कितने संख्या है ये जानना सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक कम्युनिटी का या एक सोशल ग्रुप का, एक सामाजिक गुट का अगर नंबर बहुत कम है, मान लीजिए उनके शैक्षणिक या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत गंभीर है या बहुत पिछड़ा है, तो उनको कैसे पॉलिसी के थ्रू उनको मदद किया जाए ये जानने के लिए भी सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है।
जी बिल्कुल, हमने इस पर विस्तार से बातचीत की। हम कैबिनेट के एक और फैसले पर आते हैं जो जुड़ा है गन्ना किसानों को जो दिया जाता है गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य, उसे सरकार ने आज मंजूरी दे दी है। गन्ना सत्र 2025-26 के लिए इस मूल्य को 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गन्ना किसानों के लिए जो आज उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी गई है उस पर क्या कहा।
बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वो है 173 रुपीज पर क्विंटल, ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले।
हम आपसे इस पर भी विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने तय किया है गन्ना मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल, इससे किसानों को कैसे लाभ होगा और गन्ना किसानों के बारे में अगर आप हमें विस्तार से बता सकें तो।
गन्ना किसान तो वैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सब राज्यों में मुख्यतः से गन्ने का खेती होता है और ये इन स्टेट्स को डायरेक्टली इनको बेनिफिट होगा। देखिए आदित्य जी, ये हर साल एक प्रक्रिया होता है जिसके तहत सरकार किसानों की लागत खपत कितनी होती है, मतलब इनपुट कॉस्ट जो खेत जोतने में उसको गन्ना को खेती करने में क्या खर्च है, कितना खर्च है और कितना मतलब महंगाई दर बढ़ रहा है तो कितना ज्यादा पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी कितनी बढ़त हुई, उस हिसाब से इसको उचित और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं तो वो तय करती है। मतलब ये एक हिसाब से आप बोल लो कि इससे नीचे कोई खरीदारी नहीं कर सकता है, मतलब जो गन्ना किसान है वो अपना जो प्रोड्यूस है, जो अपना खेती है, वो शुगर मिल्स को बेचते हैं, चीनी मिलों को। तो चीनी मिल जो है वो इस दाम से कम में नहीं ले सकते, और इस कैबिनेट डिसीजन से लगभग लगभग 5 करोड़ गन्ने किसान जो है, जैसे मैंने कहा कि वैसे तो सारी स्टेट्स में है लेकिन मुख्य तौर पे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट्स जो है इसमें गन्ना खेती बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, और इन स्टेटों को बहुत सीधा सीधा लाभ होगा, लगभग 5 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे।
संदीप जी, एक और फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है, वो जुड़ा है मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर के पास तक एक 167 किलोमीटर लंबी हाईवे NH6 को ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, इसे भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की कुल लागत आएगी लगभग 23,000 करोड़ रुपए। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस पर क्या कहा।
शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और असम को जोड़ता हुआ, वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर, 4 लेन, एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम जानना चाहेंगे संदीप जी, एक ये तो हो गया कि जो मेघालय से और शिलोंग से सिलचर तक को जोड़ने का एक हाईवे, हम बात करना चाहेंगे इसके साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की। पिछले 10 सालों में सरकार का विशेष जोर रहा है कि वहां पर विकास बढ़े, वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बढ़े, कनेक्टिविटी बेहतर हो। आप कैसे देखते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के समग्र विकास को इस फैसले को केंद्र में रखते हुए?
देखिए, मैं खुद ही नॉर्थ ईस्ट के हूँ, मैं आसाम से हूँ, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार का ये प्रयास रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत जोर दे। जैसे कि आपको पता है आदित्य जी कि कनेक्टिविटी जो है एक बहुत बड़ी इशू है नॉर्थ ईस्ट के लिए। आज का जो फैसला हुआ हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर, ये एक बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जैसे आपको अगर ये क्यों जरूरी है मैं बता देता हूँ। जो हालात है अभी सड़कों का, जो प्रेजेंट हालात है वो इतने, और बारिश से मानसून से खराब हो जाते हैं, कनेक्टिविटी कट जाती है, और स्थिति इतनी खराब होती है कि बहुत समय, मतलब 12, 14, 16 घंटे लग जाते हैं। जैसे कि हिंदी में कहता है कि कमर टूट जाती है बस में बैठे जाते जाते, अगर पैसेंजर सवारी हो। और जहां तक सामान, क्योंकि ये सिलचर जो है वो सदर्न असम में है, साउथ पॉइंट, वहां से ये वही रूट होता है, मेघालय तूरा होते हुए जाते हैं। उधर भी क्या है कि सामान जो होता है, जो गुड्स, मतलब एसेंशियल गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें भी बहुत टाइम लगता है, एक्सीडेंट प्रोन है, कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी कदम है। और जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है कि हर स्तर पे, हर जगह पे जहां संभव हो सकती है, क्योंकि ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर कनेक्टिविटी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसकी कोशिश है, और उसी कोशिश के दिशा में ये एक और कदम है।
संदीप जी, आपने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी, और हमने आज जो फैसले लिए गए थे, खास करके विशेषकर जो जातीय जनगणना को आने वाले जनगणना में जोड़ा जाएगा, इस पर हमने विस्तार से बात की। संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फूकन और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में